अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बॉक्स को इप्सिता के हाथ में देते हुए कहा, इसे पहनकर आइए। इप्सिता अभिमन्यु के हाथ से वो बॉक्स लेकर उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक गोल्डन कलर की साड़ी थी जिसका बॉर्डर रेड कलर का था। उसे देखकर इप्सिता हैरानी से बोली, ये हम पहने, वो भी इतनी रात में? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने इप्सिता को जल्दी से चेंज करने के लिए कहा। इप्सिता वो साड़ी पहनकर थोड़ी देर में क्लोजेट से बाहर आई। उसने देखा कि अभिमन्यु भी अपने कपड़े चेंज कर चुका था। उसने गोल्डन कलर की एक अच्छी सी शेरवानी पहनी हुई थी। उसे देखकर इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, ओहो क्या बात है, हम कहीं जा रहे हैं क्या? आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने और हमें साड़ी क्यों पहनाई है? अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, सब बताते हैं चलिए। इतना बोलकर उसने इप्सिता का हाथ पकड़ लिया। इप्सिता के ऊपर वो सिल्क की हल्की सी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और इप्सिता भी उसे पहनकर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कर रही थी। वो अभिमन्यु के साथ राजमहल से बाहर निकली और राजमहल में इस टाइम ऑलमोस्ट सभी लोग अपने कमरे में थे। अभिमन्यु इप्सिता को लेकर सीधे बाहर निकला और कार में बैठते ही इप्सिता ने अपने सवाल एक के बाद एक पूछना शुरू किया। हम कहाँ जा रहे हैं अभिमन्यु, आप हमें कुछ बताएंगे या नहीं? अभिमन्यु ने ना में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, आपके लिए सरप्राइज है। इतना बोलकर अभिमन्यु चुप हो गया और इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, आई लव सरप्राइज। अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और तभी थोड़ी ही देर में कार एक बड़े से शिव मंदिर के बाहर रुकी। अभिमन्यु ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और इप्सिता का हाथ पकड़कर वो उसे सीधे मंदिर के अंदर ले आया। वो शिव मंदिर काफी बड़ा था और इस समय वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर एक अग्निकुंड रखा हुआ था और सामने शिवजी की बड़ी सी मूर्ति थी। इप्सिता जैसे ही वहां पहुंची, उसने हाथ जोड़कर शिवजी के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि हमें आपसे कुछ प्रॉमिसेस करने थे इसीलिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वहीं शिवजी के सामने खड़े होकर उसने कहा, हम भगवान को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी मानते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले 7 जन्मों में हमें आप ही अपनी पत्नी के रूप में मिले। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, उसकी आंखें भर आईं और वो मुस्कुराते हुए अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने वहीं शिव मंदिर के पास रखी कुमकुम की डिब्बी को उठाया। फिर उसने कहा, हम जानते हैं इप्सिता, आप हमारे साथ ट्रेडिशनल शादी करना चाहती थीं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम आपके साथ कोई भी रीति और रस्में निभा ही नहीं पाए, लेकिन अब हम आज उन सारी कमियों को पूरा करेंगे। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र देखा। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसने कुमकुम की डिब्बी को उठाते हुए कहा, आज इस अग्नि और भगवान को साक्षी मानते हुए हम आपसे ये वादा करते हैं कि आज से मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी पत्नी रहेंगी और हम आपके अलावा दूसरी किसी भी लड़की का जिक्र नहीं करेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कुमकुम को अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठी के बीच से उठाया और उसे इप्सिता की मांग में भर दिया। जैसे ही अभिमन्यु का हाथ इप्सिता की मांग तक गया, इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अभिमन्यु ने जैसे ही वो सिंदूर इप्सिता की मांग में भरा, वो सिंदूर गिरता हुआ इप्सिता की नाक पर आ गिरा। जैसे ही उसकी मांग भरी, इप्सिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के करीब आकर उसकी नाक पर गिरे हुए सिंदूर की तरफ देखा और वो उसे अपने हाथ से हटाने जा रहा था कि इप्सिता ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। फिर वो मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के गले में पहने हुए मंगलसूत्र की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से उसके नजदीक आया। उसने इप्सिता के मंगलसूत्र पर बड़े ही प्यार से किस कर ली। जैसे ही अभिमन्यु ने उसके मंगलसूत्र पर किस किया, इप्सिता की सांस मानो जैसे थम सी गई हो। उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हम आपके साथ अग्नि के साथ फेरे लेना चाहते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ा और वो अग्नि के चारों तरफ इप्सिता का हाथ पकड़कर उसके फेरे लेने लगा। वो दोनों इस समय पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। अभिमन्यु ने इप्सिता से कई सारे वादे किए और इप्सिता चुपचाप बस उसकी सारी बातें सुनती जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु ये सब कुछ इस तरह से करेगा। जैसे ही उनके 7 फेरे पूरे हुए, इप्सिता ने अभिमन्यु को कसकर गले लगाया और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच अभिमन्यु। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आपको हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो थैंक यू हमें बोलना चाहिए कि आप हमारी लाइफ में आईं। इतना कुछ होने के बाद भी आपने हमें दूसरा मौका दिया।
अभिमन्यु इप्सिता से ये बात बोल रहा था कि तभी इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, हम इस प्यारे से मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो क्लिक कर लीजिए। इप्सिता पहले थोड़ी कन्फ्यूज हुई, लेकिन फिर उसने अपना मोबाइल फोन का कैमरा उठाया और उसने अपनी और अभिमन्यु की पिक क्लिक कर ली। वो दोनों ही इस टाइम काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही ब्लश नजर आ रहा था। तभी इप्सिता ने अपना फोन वापस रखते हुए कहा, वैसे आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें पिक की जरूरत नहीं है? आपको पता है हमारे लिए ये मोमेंट कितना ज्यादा खास है और हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है हमारे लिए ये मोमेंट स्पेशल नहीं है? हमने इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। हमें अपनी पूरी मोमेंट हा वीडियो मिलेगा, देखिए हमने पहले ही यहाँ पर कैमरा सेट करवा दिया था। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सीरियसली? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता ने अभिमन्यु को कसकर अपने गले लगा लिया और बोली, अरे वाह, सरप्राइज के साथ सरप्राइज वीडियो भी मिलेगा, बट ये सेल्फी हमारे लिए सबसे स्पेशल रहेगी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु बोला, ओके, अगर ऐसा है तो फिर एक दो और क्लिक कर लेते हैं। वो दोनों उसी तरह एक दूसरे के करीब खड़े होकर और फोटोज क्लिक करने लगे। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उदय होटल का सारा सामान समेटकर वहां से चेकआउट करके सीधे बाहर निकले। जैसे ही वो लोग सूर्यवंशी हवेली पहुंचे, उनकी कार हवेली के सामने रुकी। घर का एक नौकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मालकिन, उदय भाई साहब भाभी साहब को लेकर आ गए। उसकी आवाज सुनते ही उदय के मम्मी और पापा दोनों भागते हुए गेट पर आकर खड़े हो गए। उदय और नंदिनी ने देखा कि हवेली में काफी अच्छे से लाइटिंग की सजावट हुई थी। नंदिनी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। नंदिनी ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उदय उसका हाथ पकड़कर गेट पर पहुंचा ही था कि तभी उदय और नंदिनी ने देखा कि उनकी मम्मी वहीं गेट पर पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। जैसे ही नंदिनी ने उनके हाथ में पूजा की थाली देखी, उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपकी मम्मी हमारी आरती करेंगी, वरना हम ये वेस्टर्न कपड़े नहीं थोड़े इंडियन कपड़े पहन कर आते। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कौन सा आज हमारी शादी हुई है। नंदिनी धीरे से आगे बढ़ी और तभी उसने उदय का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उदय अपनी मम्मी के सामने आकर खड़ा हुआ, उदय की मम्मी ने पूजा की थाली से उन दोनों की आरती की और आरती करते ही उन दोनों के माथे पर तिलक करते हुए नंदिनी की तरफ देखकर कहा, वेलकम बेटा।
नंदिनी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने झुककर उन दोनों के पैर छुए। उदय भी उसे ऐसा करते देखकर अपनी मम्मी पापा का पैर छूने लगा। वो लोग अंदर आ ही रहे थे कि तभी नंदिनी को उदय की मम्मी ने रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको बेटा। इतना बोलकर उन्होंने घर के नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप सब, जल्दी कलश लाइए। इतना बोलते ही उन्होंने घर की दहलीज पर चावल से भरा हुआ कलश रखा और उसके ऊपर एक नारियल रखा। ये देखकर नंदिनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने उदय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उदय नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। नंदिनी की तरफ देखते हुए उदय की माँ ने कहा, बेटा, आज से ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। तुम हमारे घर की बहू होने के साथ साथ अब इस घर की लक्ष्मी भी हो, तो अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। हम जानते हैं आपकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब जब आप अपने ससुराल आ ही रही हैं तो आपका गृह प्रवेश करवाना जरूरी है। हम जानते हैं इसमें थोड़ी देर हो गई है। वे बोल ही रही थीं कि नंदिनी ने कहा, इट्स ओके मम्मी जी, आज मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आज ही मैं इस घर की बहू बनी हूँ। इतना बोलकर उसने उदय की तरफ देखा और उदय की आंखों में एक अलग ही चमक देख पा रहा था। तभी नंदिनी ने अपने सैंडल वहीं पर उतारे और उदय का हाथ पकड़कर अपने दाहिने पैर से धीरे से कलश को जमीन पर गिरा दिया। वो जैसे ही आगे बढ़ी, एक थाल में लाल रंग रखा हुआ था। नंदिनी ने अपने दोनों पैरों को थाल में रखा और अपने पैरों की छाप सफ़ेद रंग के कपड़े पर बनाते हुए वो अंदर की तरफ आ गई। उदय के पापा जो वहीं पर चुपचाप खड़े थे, उन्होंने अपने कोट की जेब से 500 के नोट निकाले और उसे उदय और नंदिनी के ऊपर से घुमाते हुए अपने पीछे खड़े घर के एक नौकर को दे दिया। तभी नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे और वो ये सब कुछ और अपना वेलकम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थीं। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम रो क्यों ही हो, जारी रहेगा।